महाराष्ट्र की लोकप्रिय अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि श्री राज ठाकरे का नहीं बल्कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है। हे माय डियर यूट्यूब फैम, आपका स्वागत है दी NSR पॉडकास्ट में एक और इनसाइटफुल एपिसोड में। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति की डायनेमिक दुनिया में यात्रा शुरू करेंगे। विजनरी नेता श्री राज ठाकरे एंड हिज ट्रांसफॉर्मेटिव विजन फॉर द स्टेट्स डेवलपमेंट। प्रभावशाली ठाकरे परिवार में जन्मे श्री राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के नेता के रूप में अपना यूनिक रास्ता बनाया है। आज हम उनकी राजनीतिक यात्रा का पता लगाते हैं, जो साहसिक निर्णयों, विवादों और महाराष्ट्र की प्रगति के लिए एक दृढ़ दृष्टि से चिन्हित है, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में स्थान दिया है। श्री राज ठाकरे के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन पर उनके अंकल श्री बालासाहेब ठाकरे, जो शिवसेना के लेजेंडरी फाउंडर थे, उनका गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि विजन के भिन्नता ने श्री राज ठाकरे को 2006 में अलग कर दिया, MNS को बनाया, जो उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री राज ठाकरे जो अक्सर पोलराइजिंग फिगर रहे हैं, मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। MNS का उद्देश्य मराठी लोगों के हितों की रक्षा करना और राज्य की अनूठी संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे समर्थन और आलोचना दोनों पैदा होते हैं, जो महाराष्ट्र के जटिल सामाजिक राजनीतिक फैब्रिक को दर्शाती है। कई उदाहरणों में उन्होंने सक्रिय रूप से मराठी मानुष के संरक्षण की वकालत की और राज्य में UP और बिहार की गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया। आइए महाराष्ट्र के विकास के लिए श्री राज ठाकरे की बहुआयामी दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं, जो शासन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्री राज ठाकरे के नेतृत्व की एक परिभाषित विशेषता जनता से, विशेषकर युवाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता है। उनके करिश्माई व्यक्तित्व ने MNS को एक रेलेवेंट राजनीतिक ताकत के रूप में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री राज ठाकरे के राजनीतिक अभियानों को अक्सर साहसिक बयानों और उत्तेजक कार्रवाई द्वारा चिन्हित किया गया है, जो गहन बहस को जन्म देते हैं और महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की पेचीदाओं को दर्शाते हैं। हाल ही में श्री राज ठाकरे ने हिंदुत्व कथा का समर्थन करते हुए BJP नेता नुपुर शर्मा को उनके विवादास्पद बयान के लिए समर्थन दिया है। श्री राज ठाकरे ने हिंदू देवताओं के नामों का कथित तौर पर मजाक उड़ाने के लिए ओबीसी बंधुओं AIMIM लीडर्स की जो भी उनकी भी आलोचना की। श्री राज ठाकरे के नेतृत्व की विशेषता असर्टिवनेस, करिश्मा और जनता की नब्ज की गहरी समझ का मिश्रण है। उनके एलिगेंट ओरेटर स्किल्स कपल्ड विद मैग्नेटिक पर्सनैलिटी व्यक्तित्व ने उन्हें महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक कंपेलिंग फिगर बना दिया है। श्री राज ठाकरे की राजनीतिक विचारधारा के कोर में महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के कल्याण और संरक्षण के लिए एक उत्कट प्रतिबद्धता है। मन से कम मराठी गौरव और मराठी भाषी आबादी की सुरक्षा पर जोर देना क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए श्री राज ठाकरे के समर्थन को दर्शाता है। महाराष्ट्र के विकास के लिए श्री राज ठाकरे का दृष्टिकोण बहुआयामी है और एक होलिस्टिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सड़कों और परिवहन में सुधार सहित व्यापक बुनियादी ढांचे के लिए उनकी वकालत राज्य के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उनके दृष्टिकोण के केंद्र महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और विकास है। वह सड़कों, परिवहन और शहरी सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुधार की वकालत करते हैं। पलायन का उदाहरण देते हुए श्री राज ठाकरे प्रवासन रोकने के लिए अन्य राज्यों की वृद्धि और विकास की पुरजोर वकालत करते हैं। विभिन्न उद्योगों में मुंबई की केंद्रीयता लगभग 1500 लोगों की दैनिक आमद को आकर्षित करती है, जिससे आवास की गंभीर समस्याएं पैदा होती है। दक्षिण मुंबई की उच्च संपत्ति दर वर्ग के परिवारों को उपनगरीय क्षेत्रों में आवास की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। पिछले 20 से 25 वर्षों में बांद्रा, कुर्ला, घाटकोपर, दहीसर, विरार, ठाणे, कर्जत और आसनगांव से परे के क्षेत्रों में सामर्थ्य के कारण प्रवासन में वृद्धि देखी गई है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि और सड़कों, पानी की आपूर्ति और परिवहन सुविधाओं जैसी बुनियादी ढांचे के धीमे विकास के बीच बेमेल के अराजकता और भीड़ को जन्म दिया है। प्रवास को कम करने और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अन्य राज्यों में संतुलित विकास की आवश्यकता के बारे में श्री राज ठाकरे की चिंताएं उचित लगती है। श्री राज ठाकरे के दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ राज्य के भीतर अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार के महत्व को स्वीकार करते हुए वह उन रणनीतियों की वकालत करते हैं जो रोजगार को बढ़ावा देती है। ये सुनिश्चित करती है कि महाराष्ट्र की युवा आबादी के पास पूर्ण और टिकाऊ करियर तक पहुँच हो। श्री राज ठाकरे ने पिंपरी के डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में 18 विश्व मराठी सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार को भी सभी जिलों में एक समर्पित विभाग बनाना चाहिए ताकि युवा मुंबई, पुणे और नागपुर में नौकरियों के बारे में जान सके। श्री राज ठाकरे ने महाराष्ट्र को भारत के फेडरल ढांचे के भीतर एक मजबूत और ऑटोनोमस स्थिति वाले राज्य के रूप में देखा। क्षेत्रीय ऑटोनॉमी के लिए उनका आह्वान एक अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर महाराष्ट्र की इच्छा को दर्शाता है। श्री राज ठाकरे ने अन्य समुदायों पर धार्मिक प्रथाओं को थोपे जाने के खिलाफ खुलकर बात की, जैसे कि एक घटनाक्रम हाल ही में हुआ जब श्री राज ठाकरे ने राज्य सरकार को अजान के दौरान इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकरों को हटाने का अल्टीमेटम दिया। महाराष्ट्र में कृषि के महत्व को देखते हुए श्री राज ठाकरे ने व्यापक कृषि सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उनके दृष्टिकोण में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटना, कृषि पद्धतियों में सुधार करना और कृषि में लगे लोगों की समग्र भलाई सुनिश्चित करना शामिल है। श्री राज ठाकरे राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं और उनका उद्देश्य एक स्थायी और संपन्न कृषि क्षेत्र बनाना है। उन्होंने लोगों को 1.10 लाख करोड़ रुपए की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना और प्रस्तावित मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना में राज्य में अपनी जमीन नहीं देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के लिए श्री राज ठाकरे का दृष्टिकोण आर्थिक व्यवहारिकता, सांस्कृतिक संरक्षण और क्षेत्रीय सशक्तिकरण का एक सूक्ष्म मिश्रण है, जबकि मराठी पहचान पर उनका ध्यान को स्थानीय चिंताओं के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसक की गई है और संभावित विभाजन के लिए आलोचना की गई। श्री राज ठाकरे की व्यापक दृष्टि में राज्य के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है। इन मुद्दों के अलावा श्री राज ठाकरे ने कई नागरिक मुद्दों को स्वीकार किया है। टोल संग्रह के मुद्दे को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और आम जनता इसे जुड़े सस्पेक्टेड पॉलिटिकल कनेक्शन से अवगत है। नकद में होने वाले धन से अपारदर्शिता बढ़ती है और पारदर्शिता की कमी है और टोल बूथों की स्थापना से संबंधित कानूनों का घोर उल्लंघन होता है। इस मामले में श्री राज ठाकरे का रुख जायज प्रतीत होता है। उनके आंदोलन के कारण कई अवैध टोल बूथ बंद हो गए हैं, जो उनके दावों की सटीकता को रेखांकित करता है। इन अवैध टोल नाकों को बंद करना इस धारणा का समर्थन करता है कि करोड़ों रुपए वास्तव में किसी की जेब में भेजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के बावजूद कई टोल नाका काम करना जारी रखते हैं और लोग परियोजनाओं की बारीकियों पर सवाल उठाए बिना ही उचित ऑडिट की मांग किए बिना ही भुगतान करना जारी रखते हैं। यह चल रही स्थिति टोल संग्रह प्रथाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की जुड़ी लगातार चुनौतियों को उजागर करती है। एक और मुद्दा जो एवरेज मुंबईकर के लिए एक निरंतर चिंता का विषय है, उनके दिमाग में रहता है क्योंकि वे रेलवे स्टेशनों के माध्यम से काम पर जाते हैं और घर लौटते हैं, फेरी वालों का मुद्दा है। जबकि मैं हिंसा की समर्थन नहीं करती, बीएमसी का या राज्य सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिए। इस मामले पर श्री राज ठाकरे के विचार उचित प्रतीत होते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से दक्षिण मुंबई के कुछ स्टेशनों को छोड़कर मुंबई के कई स्टेशनों पर इस समस्या को देखा है। दादर, ठाणे, बोरीवली, अंधेरी, मलाड, कांदिवली, घनसोली, वाशी और कोपरखैरी जैसे स्टेशनों पर फेरी वालों द्वारा रेलवे स्टेशनों के आसपास प्रवेश द्वारा, निकास और लॉबी को अवरुद्ध करने के साथ अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह स्टेशनों के अंदर और बाहर जनता के सुचारू प्रवाह को बाधित करता है, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इन फेरी वालों की उपस्थिति का क्रमिक विस्तार उन्हें लगभग मालिकाना आचरण देता है, अवरुद्ध प्रविष्टियों और निकास के मुद्दों को बढ़ाता है। इन अवैध स्टॉलों और भोजनालयों में शामिल धन और हफ्ते जैसी वित्तीय पहलुओं पर श्री राज ठाकरे जी का अंतर्दृष्टि न केवल आम आदमी के लिए बल्कि भोजनालय मालिकों और स्थानीय पुलिस के लिए भी अच्छी तरह से जानी जाती है। इस संबंध में मनसे के आंदोलन के बाद सरकार की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि स्टेशनों के बाहर की स्थिति समस्याग्रस्त है। इन मुद्दों से न केवल यात्रियों को असुविधा पैदा होती है, बल्कि कानूनी रूप से संचालित भोजनालयों की दुकानों को वित्तीय नुकसान भी होता है। ये व्यवसाय जो लगन से टैक्सेस और बिलों का भुगतान करते हैं, राजस्व हानि के कारण खुद को पीड़ित पाते हैं। श्री राज ठाकरे हाल ही में महाराष्ट्र के जटिल राजनीतिक परिदृश्य में रूलिंग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मुखर आलोचन के रूप में उभरे हैं। श्री राज ठाकरे का बीजेपी के प्रति दृष्टिकोण राजनीतिक दावपेचों का गहन अवलोकन और पारंपरिक गठबंधनों से परे सैद्धांतिक राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में श्री राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए भाजपा की खुले तौर पर आलोचना की है। उन्होंने एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से अजीत पवार के बाकी धड़े को शामिल करने के भाजपा के फैसले पर नाखुशी जताई है। श्री राज ठाकरे जो अपने रणनीतिक और संरक्षित राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भाजपा से अन्य दलों के विधायकों को अपने पाले में लिए बिना महाराष्ट्र में अपनी पार्टी स्थापित करने का आग्रह किया। श्री राज ठाकरे की भाजपा की आलोचना राजनीतिक अखंडता के प्रति उनकी व्यापक प्रतिबद्धता को अनुरूप है। कुछ मौकों पर भाजपा के साथ उनके राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद उनकी तीखी टिप्पणियां अल्पकालीन लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार करने का सुझाव देती है। राजनीति में नैतिक आचरण के प्रति यह अटूट प्रतिबद्धता श्री राज ठाकरे को एक ऐसे नेता के रूप में अलग करती है जो सिद्धांतों के महत्व को केवल राजनीतिक एक्सपीडियंसी से ऊपर रखता है। भाजपा के कार्यों में उनकी अस्वीकृति अन्य दलों के सदस्यों को अवैध रूप से शिकार करने के बजाय राजनीतिक दलों को अपना आधार बनाने की आवश्यकता में विश्वास को रेखांकित करती है। यह परिप्रेक्ष्य महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य के लिए उनके दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें सुविधा के लिए आधार पर गठबंधन के बजाय योग्यता के माध्यम से खुद को स्थापित करने वाले दलों के महत्व पर जोर दिया गया है। जबकि श्री राज ठाकरे राज्य स्तर पर भाजपा की आलोचना करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर उनका ध्यान अटूट रहता है। मराठी भाषी आबादी के कल्याण और पहचान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके राजनीतिक प्रवचन का एक केंद्रीय विषय है। श्री राज ठाकरे का भाजपा के प्रति दृष्टिकोण केवल विरोध की आलोचना नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की स्थानीय जनता की चिंताओं और हितों को संबोधित करने के लिए उनके समर्पण की निहित है। महाराष्ट्र की राजनीति में श्री राज ठाकरे का बीजेपी के खिलाफ बयान राजनीतिक समीकरणों की उनकी सूक्ष्म समझ का प्रतिबिंब है। प्रिंसिपल और नैतिक राजनीति के लिए एक व्यापक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। जैसे जैसे महाराष्ट्र में राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता रहा है, श्री राज ठाकरे का संरक्षित दृष्टिकोण और क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर उनकी राजनीतिक विचारधारा की परिभाषित विशेषताओं के रूप में सामने आती है। श्री राज ठाकरे एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, जो विभिन्न पहलुओं में मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। भाषण देने में उनके असाधारण कौशल को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और समझ बनाने की उनकी क्षमता द्वारा चिन्हित किया जाता है, एक गुणवत्ता जो हमेशा अजीत पवार या रामदास अठावले जैसे महाराष्ट्र के अन्य राजनेताओं में भी देखी नहीं जाती। श्री राज ठाकरे एक आर्थिक स्थिति आधारित आरक्षण प्रणाली की वकालत करते हैं, जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए उनके प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है। राजनीति से परे श्री राज ठाकरे की दक्षता कला के क्षेत्र में तक फैली हुई है। यह तबला, गिटार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाने में भी पारंगत है। अपने व्यापक अध्ययन के लिए जाने जाने वाले श्री राज ठाकरे को बौद्धिक गहराई का भी प्रदर्शन करते हुए विभिन्न विषयों में गहरी समझ। अपने अंकल श्री बालासाहेब ठाकरे की प्रतिभा विरासत में लेते हुए वह एक कुशल कार्टूनिस्ट भी है, जो अपने विविध कौशल सेट को पूरा करते हैं और अपने बहुमुखी व्यक्तित्व को योगदान देते हैं। तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अधिक व्यवहारिक राजनीति एपिसोड के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक आपके एनएसआर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।